दोस्तों, भारत में प्राकृतिक आपदाएं, संघर्ष, भूमि विवाद और विकास परियोजनाएं हर साल लाखों लोगों को प्रभावित करती हैं। ऐसे हालात में किसी व्यक्ति या परिवार की सुरक्षा अक्सर एक चीज तय करती है कि उसके पास जमीन या घर के कानूनी दस्तावेज हैं या नहीं। जिन लोगों के पास ये दस्तावेज होते हैं, उन्हें न सिर्फ राहत और पुनर्वास में प्राथमिकता मिलती है, बल्कि हिंसा, बेदखली और विस्थापन जैसी कठिन स्थितियों से खुद को बचाने का अधिकार भी मिलता है। और महिलाओं के लिए तो ये सुरक्षा और भी महत्वपूर्ण है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस नए अभियान के नए कार्यक्रम में, जिसका नाम है ये मेरी भी है माटी। और इसके तहत आप सुन रहे हैं राजीव की डायरी, और आज हम बात करेंगे महिलाओं के जमीन हक से मिलती है सुरक्षा की ढाल। दोस्तों, आपदा प्रबंधन के जमीनी अनुभवों से पता चलता है कि प्राकृतिक आपदा या संघर्ष के समय प्रशासन की पहली प्राथमिकता उन्हें दी जाती है जिनके पास अपनी संपत्ति के वैधानिक प्रमाण होते हैं। सरकारी राहत, वितरण और पुनर्वास पैकेज का लाभ उठाने के लिए जमीन के कागजात एक अनिवार्य शर्त बन जाते हैं। जिनके पास पट्टा या टाइटल डीड होती है, उन्हें न केवल मुआवजा जल्दी मिलता है, बल्कि नए बने आवासों में भी उन्हें प्राथमिकता दी जाती है। बिहार में हर साल आने वाली बाढ़ इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है, और इस साल बिहार के भोजपुर जिले का जवनिया गांव ताजा प्रमाण है। जवनिया बिहार के भोजपुर जिले में स्थित एक गांव था, जो गंगा नदी के विकराल बाढ़ और कटाव के कारण पूरी तरह से नदी में समा गया है। इस त्रासदी में गांव के लगभग 350 घर बह गए और 1500 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। अब गांव का कोई नामो निशान नहीं बचा, सिर्फ मकान के मलबे और गंगा की लहरें ही दिखाई देती हैं। इस गांव की रीना देवी जैसे कई परिवारों ने वर्षों तक हर बाढ़ में अपना घर बहते देखा है। आज इनके या उनके परिवार के पास कोई दस्तावेज नहीं थे, इसलिए सरकार द्वारा राहत में उनका नाम ही गायब था। रीना देवी कहती हैं कि जमीन का कागज अपने पास होना और उस पर नाम चढ़वा कर रखना बहुत जरूरी होता है, ताकि कभी भी ऐसी मुसीबत दूसरों की ओर ना पड़े। दोस्तों, पुनर्वास नीतियों में एक और अहम पहलू है महिलाओं का नाम शामिल करना। आमतौर पर पुनर्वास घरों का शीर्षक केवल पुरुष मुखिया के नाम पर बनाया जाता है, लेकिन अगर किसी महिला को पति की मृत्यु, त्याग, घरेलू हिंसा या आपदा के बाद अकेले बच्चों को संभालना पड़े, तो उसके पास कोई कानूनी सुरक्षा नहीं बचती। इसलिए ये अनिवार्य होना चाहिए कि पुनर्वास के सभी दस्तावेज, चाहे वो भूमि पट्टा हो या आवास रजिस्ट्री, महिलाओं के नाम पर भी दर्ज हो। ऐसा होने से महिलाएं भविष्य में किसी भी प्रकार की बेदखली या भेदभाव से बच सकती हैं। झारखंड के खूंटी जिले में रहने वाली जया मुंडा की कहानी संघर्ष और सत्ता के बीच महिला सुरक्षा की वास्तविक चेहरा दिखाती है। जया अपने पति के साथ सामुदायिक हिंसा और डायन बसाही के दौरान गांव छोड़ने पर मजबूर हो गई थी। लौटने पर पता चला कि कुछ लोगों ने उनकी खाली पड़ी जमीन पर कब्जा कर लिया है, लेकिन जया के पास जमीन का रैयत रिकॉर्ड और दोनों के नाम का म्यूटेशन था। दस्तावेज पेश किए जाने पर पुलिस और प्रशासन ने कब्जा हटवाया और परिवार को वापस बसाया। जया कहती हैं कि अगर कागज नहीं होते तो शायद मैं कभी भी अपने गांव में वापस जमीन नहीं ले पाती। आपदा राहत के दौरान भी महिलाओं की स्थिति चुनौतीपूर्ण रहती है। राहत शिविरों में कई बार अकेली महिलाओं, विधवाओं या महिला प्रधान परिवारों की जरूरतें प्राथमिकता में नहीं आती, जबकि राहत नीति में यह स्पष्ट होना चाहिए कि महिलाओं को सुरक्षा, आश्रय, भोजन, चिकित्सा सहायता और बाद में आवास पुनर्निर्माण में समान अधिकार मिले, विशेषकर उन महिलाओं को जिनके परिवार में पुरुष नहीं है या जो पहले से सामाजिक रूप से अधिक कमजोर स्थिति में है। यह केवल एक कागज नहीं, बल्कि राहत, सुरक्षा और सम्मान में भविष्य की स्थिरता का आधार है। खासकर महिलाओं के लिए यह आधार उन्हें न सिर्फ समाज में मजबूती देता है, बल्कि संकट के समय उनकी ओर और उनके बच्चों की जिंदगी को बचाने वाली ढाल भी साबित होता है। तब तक आप हमें बताइए कि जब किसी महिला के नाम पर घर या खेत होता है, तो परिवार या समाज में उसे देखने का नजरिया किस तरह से बदलता है। आपके हिसाब से एक गरीब परिवार जिनके पास जमीन तो है पर कागज नहीं, उसे अपनी सुरक्षा के लिए सबसे पहले क्या कदम उठाना चाहिए? और सिर्फ रहने के लिए छत होना और उस छत का कानूनी मालिक होना, इन दोनों स्थितियों में आप एक महिला की सुरक्षा और आत्मविश्वास में क्या अंतर देखते हैं? आप अपनी बात रिकॉर्ड करें राजीव की डायरी पर। राय रिकॉर्ड करने के लिए अपने फ़ोन में दबाइए नंबर 3 का बटन या फिर मोबाइल वाणी ऐप में जाकर ऐड का बटन, और सुनते रहिए राजीव की डायरी। नमस्कार।